तो आप ये जानना चाहते हैं कि पता होते हुए भी कि गलत काम है, फिर भी मन कई बार मजबूर कर देता है करने के लिए, हम उन विकारों से बच नहीं पाते, क्या करें? हमारी जो वास्तविक स्थिति है हम लोग स्वभाव के अनुसार चलने के लिए मजबूर होते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और भी काम करती है, कुछ प्रारब्ध हमको कर्म करने के लिए मजबूर करता है, हमारा उस पर वश नहीं होता। और हम सब जानते हैं प्रारब्ध अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन हम इसको ठीक ठीक समझ नहीं सकते। तो इसका उपाय एक ही है, हमें यह समझना चाहिए कि जो मेरा स्वभाव है आज, ये आया कहां से है? ये स्वभाव किसी ने मुझे दिया है या मैंने इसका निर्माण खुद किया है? तो महाराज जी तो कहते हैं, प्रेमी, हर जीव अपना स्वभाव लेकर पैदा होता है, परंतु यदि कोशिश करे तो अपना स्वभाव बदल भी सकता है। इसका मतलब, मैं यदि घोर रजोगुणी हूं, संसार के भोगों में मेरी गहरी आस्था है और गहरी आसक्ति है, तो मृत्यु से पहले मैं अपना सतोगुणी स्वभाव लेकर संसार से विदा हो सकता हूं। और सतोगुणी स्वभाव का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति ईश्वर के लिए जीता है वो हर कर्म पर ध्यान देता है और शास्त्रों का गहरा स्वाध्याय करता है कि कौन से ऐसे कर्म करूं, कौन सा ऐसा आहार ग्रहण करूं, कैसे मैं संसार में कमाई करूं, हर एस्पेक्ट में वो शास्त्र का मार्गदर्शन देखता है और पूरी कोशिश करता है उसी के अनुसार जीवन चलाने। उसके पश्चात भी उससे गलतियां होती हैं, जो स्वभाव है उसको कई बार मजबूर कर देता है गलतियां करने के लिए, कई बार प्रारब्ध मजबूर कर देता है, जो कर्म शरीर से होने वो हो जाते हैं। तो ये वो समझ जाता है जो इतना अलर्ट है शास्त्रों के स्वाध्याय में, उनके गहरे मनन में, और हर बारीकी को समझने की कोशिश करता है और उसके अनुसार ही वो चलने की कोशिश करता है, तो उसको पता लग जाता है कि ये जो हो गया ये होना नहीं चाहिए था। इसलिए उसके अंदर उस कर्म के प्रति गहरा पश्चाताप होता है, ये क्यों हुआ? अब हो गया, जो तीर बाहर चला गया कमान से वो वापस तो आना नहीं है, कर्म भी हो गया उसका फल भी निश्चित हो गया, वो मैंने भविष्य में भोगना ही है, दुनिया की कोई ताकत उसमें ये बचा नहीं सकती। तो इस तरह हम देखें कि पास्ट जो हमारा कर्मों का बंडल है, जो संस्कारों का बंडल है, उसका एक पार्ट हमको फ्रैक्शन इस जन्म में भोगने को मिलता है या करने को मिलता है, और मेजर पोर्शन तो उसका ड्यू है, भी बैलेंस बचा हुआ है वो अगले जन्मों में भोगना पड़ता है, और इस जन्म के जो नए कर दिए उसका भी आपको पार्ट भोगना पड़ता है। तो ये सिलसिला तो अंतहीन है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए सतपुरुष कहते हैं जो मनुष्य जन्म लेकर जीने का रास्ता है वो कर्मों का फल भोगने के लिए जीने का रास्ता नहीं है। कर्म में आप पराधीन हैं क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है। ये देह के मालिक आप नहीं है, देह का मालिक अंतर्यामी ईश्वर है, उसके हुक्म में ये चल रहा है। इसलिए जितने कर्म होने हैं इस देह से जिस दिन हो जाएंगे ये देह शांत हो जाएगी आपकी। हो सकता है आपकी एक ही वर्ष की आयु मिले किसी को, हो सकता है किसी को 50 की मिले, हो सकता है किसी को 100 की मिले। तो जितने कर्म इस देह से होने हैं जो प्रारब्ध के अधीन है वो सारे कर्म इस देह करेगी, उसके बाद आदि शांत हो जाएगी। तो ये भूल के ही मैं ना सोचूं मैं देह का मालिक हूं। हां, एक क्रिया का मालिक हूं, स्वभाव का। स्वभाव बनाना और बिगाड़ना इसका मैं मालिक हूं। तो इसीलिए मैंने बड़े होश में अपने स्वभाव में परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ करना है। और हम सब जानते हैं कि जो क्रिया हम बार बार करते हैं, किसी भी क्रिया को रिपीट कर लें, उसकी फिर हमको बार बार याद आने लगती है। याद क्यों आती है? बुरी लगेगी तब भी याद आएगी, अच्छी लगेगी तब भी याद आएगी, दोनों तरह के संस्कार आपके अंदर बन जाएंगे। तो जिस क्रिया को मैं बार बार करता हूं उसका संस्कार मेरे मन में बन जाता है, और संस्कारों का जो समूह है वो स्वभाव के रूप में प्रकट होता है। फिर क्रिया बिना सोचे समझे ही उसको करने का आपके अंदर प्रेरणा अंदर से आएगी, वो संस्कार और स्वभाव आपको प्रेरित कर रहा है, और स्वभाव वश होकर आप उस क्रिया को कर जाओगे। तो इसीलिए इस संस्कार और स्वभाव के साथ साथ बुद्धि भी तो है भाई, बुद्धि का निर्णय भी तो है, वो डिटरमिन करती है, निश्चय करती है। तो निश्चय करती है ये संसार के अनुसार, जैसा संसार चलता हुआ देखती है वैसा ये निश्चय करती है, इसी में देखती है क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन सत्पुरुष कहते हैं बुद्धि को सत विचार करना चाहिए, बुद्धि को सत निश्चय करना चाहिए, वो उसके पीछे सत लगाते हैं। ईश्वर छोड़कर, ईश्वर विज्ञान छोड़कर जितने भी बुद्धि के निश्चय हैं सब असत निश्चय हैं, जो जीव का पतन करते हैं। आप कितने भी 30 मार्का बन जाओ आपका पतन होना ही होना है, आप उसको रोक नहीं सकते, आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे पतन हो रहा है। आपको सही पतन का पता केवल शास्त्रों के अनुसार जब तक आपका निश्चय नहीं बदलता, शास्त्रों के अनुसार आपके निर्णय नहीं बदलते, उस विज्ञान को आप गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक आप ना कभी जिंदगी में सतोगुणी बन सकते हो ना आप जिंदगी में कभी ठीक चल सकते हो। तो आपका जो स्वभाव है या रजोगुणी बना रहेगा या तमोगुणी बना रहेगा, सतोगुणी तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि सतोगुणी का मतलब होता है उसके पीछे सत लगा हुआ है, बिना ईश्वर के निश्चय के वो स्वभाव आपका नहीं हो सकता। कोई कहे मैं दूध दही खाता हूं साहब, फल खाता हूं, मैं तो सतोगुणी जीव हूं, केवल आहार बदलने से सतोगुणी नहीं हो जाता। हाँ, ईश्वर प्राप्ति के लिए तू आहार यदि शुद्ध कर रहा है फिर तू फल दूध खा रहा है तब तेरा फर्क पड़ेगा, तब तेरा आहार तेरे सतोगुणी बनने में सहायक होगा। तुझे तेरे अंदर सत का निश्चय नहीं है फिर आहार क्या करेगा तेरा, खाली आहार से कुछ नहीं होना, ऐसी खाली सादगी से भी कुछ नहीं होना। गांव वाले बड़े सादे होते हैं, क्या हो जाता है, विकास हो जाता है उनका। तो वो क्रिया मैं किस लिए कर रहा हूं, वो उद्देश्य तो पहले मेरे सामने होना चाहिए ना, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं ये सारा तप कर रहा हूं। इस रंगीन दुनिया में सादगी अपनाना तप नहीं है क्या? इतने आहार के सामान बिखरे पड़े हुए हैं, इतने स्वाद हैं संसार में, मैं सीमित मात्रा में आहार ग्रहण कर रहा हूं, सतोगुणी आहार ग्रहण कर रहा हूं, तो इस दुनिया के भोगों के मुकाबले में ये तप नहीं है क्या? हर चीज जो आप ईश्वर के लिए कर रहे हैं वो तप है। तो आपको अंदर पता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, तब तो मैं मेडिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी करता हूं। डॉक्टर ने कह दिया भाई शुगर की बीमारी है, मिठाई नहीं खानी। मैं चावल भी नहीं खाता हूं, आलू भी नहीं खाता हूं, जिस चीज में शुगर होती है उससे परहेज करता हूं। कितना तप करता हूं, इतना तप करने के बाद भी यदि मैं तमोगुणी हूं तो तमोगुणी होकर ही मरूंगा, कोई अंतर नहीं आएगा मेरे में। तो इसीलिए हम यदि संसार में ये देखें लोगों को ये बहुत सत्य बोलता है, आहार बार लिमिटेड करता है, ये व्रत भी खूब करता है, ये सारे काम करता है, लेकिन वो ईश्वर भक्त नहीं है, करते हुए भी ईश्वर भक्त नहीं है, और ये सब करनी उसकी तप में शामिल भी नहीं होती है। इसलिए धार्मिक दिखाई देते हुए भी वो धार्मिक नहीं है, वो केवल सांसारिक आदमी है। उसकी बुद्धि का निश्चय ही नहीं बदला है, ना अपने बारे में होश है मैं कौन हूं, ना ईश्वर के बारे में होश है ईश्वर क्या है, ईश्वर का मेरे जीवन में रोल क्या है इसका भी उसको पता नहीं है। मैं जो कर लूंगा वही है बस, उसको होश ही नहीं इस बात का कि ईश्वर का मेरे जीवन में रोल क्या है। इतना बड़ा रोल है कि जिस काम को करने के लिए देह पैदा हुई है सारे कर्म ईश्वर करवाएगा आपसे। महर्षि रमण कहते हैं तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, तेरी जिंदगी तो एक मिनट भी बिना ईश्वर के चली नहीं रही है, लेकिन संसारी व्यक्ति को होश है ईश्वर का, वो था मैं तो स्वतंत्र जीवन है, जैसे चाह रहा हूं वैसे जी रहा हूं। जो मनुष्य पूरी तरह से ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के पराधीन है, वो अपने आप को इतना अहंकारी बना लिया उसने कि स्वतंत्र सत्ता हो गई, वो जैसा चाहूं मैं कर सकता हूं, जो चाहता हूं मैं करता हूं। तो संसारिक बुद्धि के निश्चय में और आध्यात्मिक बुद्धि के निश्चय में जमीन और आसमान का अंतर है, डे एंड नाइट का अंतर। इसलिए हम अच्छे आदमियों को देखे कंफ्यूज ना हो जाएं, ये बड़ा अच्छा आदमी है। अध्यात्म में अच्छा आदमी उसे कहा जाता है जो ईश्वर विश्वासी है और गंभीरता से ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला है। अच्छे की परिभाषा यही, और कोई अच्छा नहीं। गाय भी बड़ी अच्छी होती है, दूध देती है, घास खाती है। सीधी गाय मिल जाए तो उसका जब चाहो दूध निकाल लो, तो क्या अच्छी है वो? उस गाय को आप अच्छा कहोगे क्या? शैतान मनुष्य तो लाख गुनी अच्छी है वो, फिर भी अच्छी नहीं, क्यों? ईश्वर का उसे कोई बोध ही नहीं, अपने बारे में से कोई ज्ञान ही नहीं है। ईश्वर का मेरे जीवन में क्या रोल है इसका उसको पता ही नहीं। तो इसीलिए अच्छा होने के बाद भी मनुष्य जड़ बुद्धि जीव है वो। इसलिए हमें अपनी ये इस करने का अहंकार ही हो सकता है हमको, इससे हमारा विकास नहीं हो सकता। सीधेपने का भी, ईमानदारी का भी, फलहारी बनने का भी अहंकार हो सकता है, इससे लाभ नहीं हो सकता हमारा। हाँ ठीक है, आपके शरीर में रोग नहीं होंगे, हो सकता है आपका कम खर्चे में गुजारा भी चल जाए, हो सकता है उसको आप दान, उसका दान भी कर दो, ये सब काम तो हो जाएंगे, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि में आप अच्छे आदमी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वाणी तो निर्णय कर रही है। देखो ना, वाणी का निर्णय तो सीखना पड़ेगा हमको। बिना विवेक मनुष्य जो होई पशु समान जीवन सो खोई। तो अब बताइए, जो अच्छा आदमी समाज में है उसके अंदर विवेक है क्या? बिना ईश्वर के तो विवेक होता ही नहीं है, विवेक का सीधा संबंध तो ईश्वर के साथ में। तो बिना विवेक के तो पशु समान जीवन है, जैसे अच्छा आदमी कह दो, कह सकते हो गाय के समान है, और क्या कहोगे उसको आप? तो इसीलिए स्वभाव मैंने बदलना है, और वर्तमान स्वभाव लेके जो पैदा हुआ हूं या इस समय मेरे पास जो स्वभाव है, इस स्वभाव पे मैंने सख्त दृष्टि रखनी है। ये कैसा स्वभाव है, कहां कहां मुझे ये गलतियां करने के लिए मजबूर कर रहा है, نہ چاہتے ہوئے مجھے کرنی پڑ رہی ہیں، اس پر سخت نظر رہنی چاہیے۔ تو جو جو غلطی آپ سے ہوگی اس کے لیے آپ پچھتاؤ گے اندر کہ پربھو کرپا کر، کیسا پرارتھ لے کر آیا ہوں میں، کیسا سوبھاؤ لے کر آیا ہوں کہ میں مجبور ہو رہا ہوں اس پرکار کا جیون ویتیت کرنے کے لیے، کرپا کر۔ تو اس کی کرپا یہی ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے پھر روتا ہے، اور رو کر پربھو کو یاد کرتا ہے، کیول پچھتاتا نہیں رہتا۔ سنسار کی غلطیوں کے لیے پچھتاتا ہے اور رو رو کر پربھو کی یاد کرتا ہے۔ تو پربھو کیا کام کرتے ہیں؟ پربھو اس کی بدھی کو نرمل کرتے ہیں، اس کو ست نشچے پردان کرتے ہیں۔ جو پربھو کے لیے روئے گا اس کے اندر ست نشچے تو آئے گا، ایشو کا نشچے تو آئے گا۔ تو ایسا ویکتی دھیرے دھیرے شاستروں کے مرم کو شرون کے دوارا، ادھیان کے دوارا گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے۔ یہ پرکریا اس کے اندر آٹومیٹکلی ہوتی ہے۔ جو گمبھیر ہے مجھے یاد ہے 1977 میں نے سمتا ولاس خریدی تھی اور سمتا پرکاش گرنتھ خریدا تھا۔ اس سے میں گرنتھ یہ 10 روپے کا ملا کرتا تھا، یا سمتا ولاس 10 روپے کی ملتی تھی، گرنتھ 20 روپے کا ملتا تھا۔ تو دلی میں تھا، میں خرید کے لایا تو پہلی بار ریڈنگ میں نے کری سمتا ولاس کی اور سمتا پرکاش کی گرنتھ کی۔ لنچ ڈیفینس میں 1 گھنٹے کا ہوتا تھا، تو وہاں میں 1 گھنٹہ اپنے کمرہ بند کر کے ان کی اسٹڈی کرتا تھا۔ مجھے یاد نہیں مجھے کچھ سمتا ولاس سمجھ آئی ہو یا سمتا پرکاش گرنتھ سمجھ آیا، ہندی تو سمجھ میں آئی اس کی، لیکن کیا میں نے اس میں سے گین کیا مجھے یاد نہیں۔ اس کا مطلب اس کا کوئی وشیش افیکٹ بدھی پہ نہیں پڑا ہوگا، نہیں تو کوئی نہ کوئی بات یاد ہوتی ہے۔ یاد نہیں مجھے، پہلی ریڈنگ میں نے کیا سیکھا مجھے یاد نہیں۔ میں کو میری سمجھ آ گئی، یہ بھی بات غلط ہے، سمجھ بھی نہیں آئی۔ 77 میں کے اینڈ میں نے یہ پستکیں خریدی تھی، اور 78, 79, 80 3 سال میں نے ان کا ادھیین کیا، اور وہ 3 سال یہاں ایک ایک مہینے کے لیے تپوبھومی میں آتا رہا میں، اور وہاں ستسنگ میں بھی جانا شروع کر دیا آشرم میں دلی میں۔ 3 سال بعد سمتا ولاس میری اتنی سمجھ میں آنے لگی کہ سمتا ولاس کے آخری میں آپ دیکھیے 248 کوئسچنس لکھے ہوئے ہیں سمتا ولاس کے اینڈ میں، اور اس کوئسچن کا آنسر سمتا ولاس میں کس جگہ ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے، وچن نمبر یہ، پیج نمبر یہ، اس پیج پہ یہ وچن پڑھو گے، اس پیج پہ پوری سمتا ولاس میں مان لیا دھرم کیا ہے، آپ نے سیکھنا ہے کہ گرو کیا کہہ رہا ہے کہ دھرم کیا ہے، تو آپ نے اینڈ میں سے نکالا دھرم کیا ہے کوئسچن، اور اس میں دیکھا کہ کس پیج پہ کون سا وچن پڑھوں، تو پتہ لگا 3-4 پیجز لکھے ہوئے ہیں وہاں پر، اس پہ وچن نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہ سب پڑھا تو آپ کو اس پرشن کا اتر مل جائے گا سمتا ولاس سے کہ دھرم کیا ہے۔ تو بتائیے اتنے پرشن، اتنے ان کے اتر اسی بدھی سے تیار ہوئے جو 77 میں اس کو سمجھنے میں ہی اسمرتھ تھی۔ لیکن ایک چیز مجھے پتا ہے کہ میں نے کس بھاونا سے پڑھا تھا اس ان گرنتھوں کو۔ من میں ایک تیور لگن تھی کہ اس جنم میں ایشور پراپتی کرنی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ایشور کیا ہوتا ہے اور کیسے پراپت ہوگا، پراپت ہوگا بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک لگن تھی۔ اس لگن کے آویگ میں نے ان کا ادھیان کیا تھا، اور مہاراج جی پہ پوری شردھا تھی کہ گرو جب خود ایشور ہے تو مجھ کو ایشور تک تو پہنچائے گا۔ وہ تو اس نے جو گیان دیا ہے ایشور تک پہنچنے کا، उसको बिना समझे मैं कैसे छोड़ सकता हूं। मैं तो हर ज्ञान को उसी प्रकार समझना है जिस प्रकार वो समझाना चाह रहा है। तो फिर मैंने उसी स्पिरिट से उसका स्वाध्याय किया। तो सन 80 में मेरे अंदर ये विचार आया कि किसी के मन में कोई प्रश्न उठे इस मार्ग पे चलने के लिए, उसे उत्तर कहां से मिलेगा? तो गुरु का ज्ञान है तो इसमें उत्तर मिलना चाहिए। तो बस प्रभु कृपा करते हैं, मेरी करनी नहीं है, मैं मुझको इसका अहंकार भी नहीं है, ये प्रभु की कृपा है कि उन्होंने विचार बुद्धि में ऐसा विचार डाला कि भाई जो वचन तू पढ़ रहा है तो इसमें ये तो देख कि इसमें किस बात का उत्तर छिपा हुआ है। वहीं से प्रश्न का जन्म हो गया। तो पहले वचन से समता विलास पढ़नी शुरू करी, जिस वचन में जिस बात का उत्तर था वो प्रश्न मैंने नोट कर लिया। तो पूरी खत्म करते करते 248 क्वेश्चन तैयार हो गए, उनके उत्तर भी तैयार हो गए। उसको फिर अगला जो संस्करण निकला उसे मैंने पब्लिश करा दिया। उसके बाद जब भी मुझे सत्संग करना होता था, कोई विषय छाटना होता था, मेरे लिए मास्टर गाइड बुक समता विलासी बन गई। कोई भी टॉपिक मान लिया मैंने, सत्निश्चय कैसे आए ये टॉपिक बोलना है, मान लिया सब्जेक्ट चूज किया है मैंने, तो प्रश्न निकाला पीछे से कि ईश्वर विश्वास कैसे उत्पन्न होता है, और उसके देखा कहां कहां लिखा हुआ है इसके बारे में महाराज जी ने, वचन नंबर पेज नंबर निकाले, समझ आ गई बात सारी, उसकी डिटेल्स खुद तैयार कर ली है, टॉपिक तैयार हो गया। तो देखिए शास्त्र आप यदि पूरी श्रद्धा से पढ़ते हैं, पूरी लगन से पढ़ते हैं, तो यहां कहते हैं ज्ञान ही गुरु है। इसलिए महा जी कहते हैं प्रेमी ज्ञान ही गुरु है, कि ज्ञान को गुरु की दृष्टि से पढ़ो तो सही थी। मैं तो अपनी बुद्धि की दृष्टि, मैं कितना बुद्धिमान हूं उस दृष्टि से पढ़ता हूं, श्रद्धा कहां होती है, समर्पण कहां होता है उसके पीछे। श्रद्धा और समर्पण बुद्धि चाहिए, इसीलिए गीता में भी कृष्ण लिख रहे हैं कि गीता ज्ञान किसको सुना जा सकता है, इसको पढ़ने का पात्र कौन है, इसको सुनने का पात्र कौन है, सारी पात्रता वहां पर 4 श्लोकों में 18वें अध्याय में लिखी हुई है। और मैं अपनी बुद्धि का अहंकार लेके पढ़ता हूं, फिर निर्णय करता हूं कि मेरे मतलब की है भी या नहीं है, ये भी निर्णय करता हूं, या कितनी मेरे मतलब की। तो इसीलिए शास्त्र श्रद्धा, और जिस गुरु का शास्त्र है या जिस सत्पुरुष का शास्त्र है वो गुरु श्रद्धा, ये दो प्री कंडीशंस हैं उसके पढ़ने से पहले। इसीलिए यदि आप किसी विद्वान को पुस्तक दे दो ना, वो रीडिंग लेके ऐसी रख देगा, उसको कुछ नहीं सीखेगा उसको, यदि वो विद्वान है तो। और विद्वत्ता के साथ साथ उसमें श्रद्धा भी है इस प्रकार की जो गीता कह रही है, तब सीखेगा उसमें से। क्योंकि मैं ये समता विलास एक बार मैंने एक एडिटर को दी थी दिल्ली में, वो मेरे घर आया था, अच्छे संबंध थे उससे, और हिंदी की पत्रिका मासिक पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी, उसका वो एडिटर था। तो पूरी रीडिंग करने के बाद फिर वो मुझको जब घर देने आए है नहीं, तो मैंने पूछा कैसी किताब है ये, बोले अच्छी है फिनिश, उसके अलावा एक वर्ड भी नहीं। तो मैं समझ गया यहां ना गुरु श्रद्धा है ना शास्त्र श्रद्धा है, वर्ड्स पढ़ लिए खाली। तो इसीलिए आपने शास्त्र से गाइडेंस लेनी है, संसारी अच्छे अच्छे विचारों से नहीं। जो गुरु जी जो बात आपके अंदर गुरु पैदा करना चाह रहा है वो बात उनसे नहीं आने वाली आपको, इसलिए शास्त्र श्रद्धा लाजमी है। और ये प्रभु की कृपा है हम लोगों के ऊपर, के हमारे वक्त में ऐसा शास्त्र प्रकट हुआ है जिसके अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये सारा सारा संसार इस समय गहरी वासना में फंसा हुआ है। और वासना का जितना विशद विश्लेषण समता विलास में है, दुनिया के अंदर आज तक किसी शास्त्र की ऐसी रचना हुई नहीं कि जिसमें वासना का इतना विशद विश्लेषण हो। पूरी गीता पढ़ जाइए, एक दो जगह एक दो वर्ड्स मिलेंगे खाली बस इसके बारे में। अर्जुन पूछता है कृष्ण से, वासुदेव मनुष्य को पाप करने के लिए कौन प्रेरित करता है, किसके वशीभूत होकर यह मनुष्य पाप करता है? तो कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपनी वासना या इच्छा के वशीभूत होकर पाप करता है। बस खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। और यहां दो चैप्टर पूरे पूरे लिखूंगे, वासना विवेक उसके चार अंग लिखे हैं महाराज जी, योग मार्ग बोध इसका पहला जो अंग है, भोगवाद स्थिति वो इसी वासना पर ही है, डिजायर्स पर ही है। और भी जगह कितनी जगह आती है वो बातें, ये तो दो तो फुल चैप्टर्स हैं, उसके अलावा सारी समता विलास भरी पड़ी है इन बातों से। तो हमारा रोग क्या है ये ईश्वर जानता है, हम किस क्रॉनिक रोग में ग्रसित हैं ये हमारा ईश्वर जानता है। इसलिए ये ईश्वर की रचना है कि हमको उसमें से निकालेगा कैसे। आज तो प्रेमी नहीं है यहां मौजूद, आज मैं उनकी बात कहता हूं आपसे। बरेली के प्रेमी आए थे, तो एक दिन ऐसे ही विचार चल रहा था इसी बात पर गौर, मैंने कहा था उसमें, मैंने कही कि यहां आए हो तो वासना विवेक का पहला अंग और भोग और जो योग मार्ग बोध है उसका पहला अंग भोगवाद स्थिति जरूर पढ़ना और इस पर गहरा विश्लेषण करना। अगले दिन मुझे मिले तो कह रहे थे कि मैंने आज भोगवाद स्थिति का अध्ययन किया है बड़ी गहराई से। कैंप तो वो कर चुके 3 साल पहले, लेकिन भोगवाद स्थिति का अध्ययन यहां पहली बार किया उन्होंने और फिर आंसू टपकने लगे उनके। बोले क्या समझ के हम जिंदगी जी रहे थे, क्या समझ के हमने पैसा इकट्ठा किया है, अब अफसोस हो रहा है हमने करा क्या है। देखिए बहुत लोगों को दिखाया भोगवाद स्थिति लोग पढ़ते हैं, लेकिन जिसने समझ के साथ पढ़ा उसको वो रो रहा है अपनी करनी पर। वो पापी व्यक्ति नहीं है, उसने पाप नहीं किया, लेकिन वक्त की बर्बादी उसको नजर आ रही है कि मैंने पैसा कमाने में कैसी वक्त की बर्बादी की, ये मैंने पाप कमाया है। क्योंकि उसने वहां सीख लिया कि 5 विकार महाद खुदाई जले सकल संसारा, ये बात उसने भोगवाद स्थिति पढ़ के सीख ली। किन बच्चों के लिए पैसे कमा रहा हूं, उनको भोगवाद में डालने के लिए, खुद भोगवादी बनने के लिए, इस पॉइजन की कमाई करने के लिए, जिंदगी का सर्वनाश करने के लिए। यहां गहराई से बैठ के उसने इस वातावरण में यह स्टडी करी तो इस निर्णय पर पहुंचा और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तो आपको शास्त्र पढ़कर ही अपनी गलती का एहसास होगा, यदि आपने उस गहराई से उस गहरी श्रद्धा से पढ़ा है तो, और बुद्धि की चतुराई से पढ़ा है तो ये स्थिति नहीं आई आपकी। तो इसलिए भावना क्या है उस शास्त्र को पढ़ने के पीछे, उसका मेजर रोल होता है, मेजर रोल। बड़े बड़े बुद्धिमान मैंने देखे हैं जिनके हाथ में ये पुस्तकें पहुंची हैं, लेकिन कुछ नहीं सीखा उन्होंने, बड़े बड़े बुद्धिमान। जो IAS भी परीक्षा पास कर सकते हैं लेकिन इसको समझने की अकल नहीं है उनके पास। तो इसीलिए ये जो स्थिति है, ये जो हमारी अज्ञानता की स्थिति है, यह ही हमको पाप करने के लिए मजबूर करती है, स्वभाववश और प्रारब्धवश। लेकिन यदि आपके अंदर जागरूकता आ गई इन शास्त्रों को पढ़ पढ़कर, गुरु पर पूर्ण श्रद्धा करके, उसके हर वचन को ब्रह्म वाक्य समझना और अपने कल्याण के लिए समझना, ये भावना यदि आपके अंदर आ गई है तो हर वक्त आपकी बुद्धि उन्हीं विचारों में घूमती रहेगी, तो हर गलती का आपके अंदर गहरा पश्चाताप होगा और आगे से प्रभु कृपा मांगोगे, प्रभु ऐसी बुद्धि बख्श कि आगे से गलतियां ना हो। और गुरु की जो आज्ञा है उसका दिल से पालन करने की कोशिश करो। सिमरन के बारे में महाराज जी की कितनी सख्त हिदायत है, बरेली के प्रेमी भीमसेन जी के सामने जब महाराज जी ने कहा उनके प्रश्न के उत्तर में कि प्रेमी, उन्होंने ये कहा था भीमसेन जी ने कि महाराज जी क्या करूं, मरीज होते हैं उनका इलाज करता हूं तो मुझे सिमरन का वक्त नहीं मिलता। तो महाराज कहते हैं प्रेमी तू भी तो रोगी है, संसार में तू अपना रोग, अपने रोग का इलाज करने आया है। देखो मैं वैद्य हूं, मुझे दूसरे रोगी नजर आते हैं, खुद रोगी नजर नहीं आता। अब गुरु कह रहा है ये, तू खुद भी तो रोगी है, अपने रोग का इलाज। वो मां जी के साथ तर्क करते हैं, कहते हैं महाराज जी इमरजेंसी आ जाती है, कई बार रोगी आवाज लगा देता है, रोगी देखने का टाइम भी खत्म हो चुका फिर वो आवाज लगा देता है, वो मुसीबत में है, मुझे उसका इलाज करना पड़ता है। अब जब इमरजेंसी की बात आती है, रोगी की जान भी खतरे में हो सकती है उस समय, अब गुरु क्या कहता है, जो खुद ईश्वर है, जो हमारी सारी देह का मालिक है, वो क्या कहता है, वो कहता है तू उसको बचाने वाला कौन है, प्रभु ने उसके जीवन की रक्षा करनी है तो कहीं ना कहीं वो उसको भेज देगा। सांसारिक बुद्धि से हमारी ये बात कभी भी समझ में नहीं आएगी, कभी समझ में नहीं आएगी, किसी डॉक्टर को समझा लो कोई नहीं समझ पाएगा इस बात को, गुरु का शिष्य ही इस बात को समझ पाएगा जिसके अंदर गुरु श्रद्धा पहले है। और गुरु इसलिए बनाया है कि अपनी बुद्धि का समर्पण उसके आगे कर सके, गुरु उसने इसलिए बनाया है। तो जिसके अंदर ये समर्पण बुद्धि है उसके आगे ही गुरु ऐसी बात कहता है, संसारी के आगे नहीं, कभी नहीं कहेगा। वो कहता है तू उसको बचाने वाला कौन है, तेरे घर को आग भी लग जाए फिर भी तू सिमरन मत छोड़ना। कितनी सख्त हिदायत शिष्य के लिए। तो जिसने साक्षात ब्रह्म को गुरु बनाया है वो ये भी जानता है कि सृष्टि को चलाने वाला ब्रह्म ही है, ईश्वर ही, मैं कौन। तो जो ईश्वर को कर्ता समझता है वही इतनी हिम्मत जुटा सकता है कि गुरु की कहनी के अनुसार यदि मौका आ जाए, ऐसा घर को आग लग जाए, मैं सिमरन कर रहा हूं और गुरु की कथनी याद आ जाए, मुझे गुरु ने कहा था घर को आग भी लग जाए लेकिन तू सिमरन से मत उठना, तो वो नहीं उठेगा। चाहे वो जल भी जाए उस आग में, वो समझ लेगा कि प्रभु का यही हुक्म है, तो मैंने इसी आग में जलना था। लेकिन ये बात सब पर लागू नहीं होती, इतना बड़ा कलेजा हम कहां से लाएंगे। तो इसलिए हम इतनी सख्ती नहीं कर सकते, लेकिन उसकी बेसिक आज्ञा तो पालन कर सकते हैं जो उसने लिखित में छोड़ दी है, वहां किसी कंसेशन की बात नहीं की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुनिया के काम बढ़ जाएं तेरे, दुनिया के कर्तव्य बढ़ जाएं तो ये प्राइम कर्तव्य तू छोड़ देना, ये नहीं कहा उन्होंने। तेरा प्राइम कर्तव्य तो ईश्वर भक्ति है ना, ईश्वर उपासना है। समतलवास में महाजी ने लिख भी दिया, सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है। इसके आगे कौन से कर्तव्य की बात तो कर सकता, हाँ ये कह सकता है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, ये बात तो कह सकता है, लेकिन कर्तव्य की बात तो कैसे कह सकता है, तो ईश्वर से भी ऊंचा आदमी हो गया क्या। सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है। और आगे समता विलास में लिखते हैं, सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है। तो किस मुंह से मैं कह सकता हूं संसार के काम ज्यादा है मेरे पास, सिमरन करने का वक्त नहीं। तो यदि तेरी बुद्धि जागरूक है और शास्त्र का मार्गदर्शन, गुरु का मार्गदर्शन स्वीकार करती है, फिर तो एफर्ट करेगा ही करेगा। यदि तूने गुरु ईश्वर प्राप्ति के लिए बनाया है, तो गुरु भी तूने इसलिए बनाया कि संसारी कार्य मेरे सिद्ध कर देगा, फिर तो बात ही दूसरी है। लोग ऐसे इसलिए भी गुरु बना लेते हैं, इसलिए भी गुरु के पास जाते हैं। तो ऐसा निश्चय गुरु के प्रति जिसका है, वो उसके शास्त्रों को बहुत गहराई से पढ़ेगा, उसका कोई अंत नहीं है उस गहराई का, उसका पूरा जन्म लग जाएगा उस शास्त्र के पढ़ने में, उसको समझने में। और ये गहराई समझ में उसी की आएगी, विचार में गहराई उसी की आएगी जो उसके अनुसार करने पर उतर जाएगा। कोई समझे ये कि मैं बुद्धि की चतुराई के साथ साथ पढ़ पढ़ के इसी गहराई समझ जाऊंगा, ये जिंदगी निकल जाएगी, वो कभी समझ में नहीं आएगा। शास्त्र की गहराई उसी के आगे खुलती है जो उसके अनुसार करनी करने का दृढ़ संकल्प करता है। प्रारंभिक बातें तो समझ लेगा इंसान, लेकिन आगे समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कैसे नहीं बदलेगा, जरा बताओ मुझे। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि का निश्चय कभी कैसे नहीं बदलेगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है, वो भले ही आज घोर रजोगुणी हो, वो सतोगुणी बनकर ही देह त्याग करेगा। भले ही इसको ईश्वर प्राप्ति ना हो, लेकिन सतोगुणी तो बनेगा। तो अगला जन्म में उसकी आगे की यात्रा होगी, प्रारब्ध भी अच्छा मिलेगा उसको। इतना जागरूक इंसान जो है वो जान के तो गलती नहीं करेगा, गलती करने के उसके अंदर गहरे संस्कार भी नहीं बनेंगे। याद रखिए, जो वासना पूर्ति के लिए गलती करता है उसके तो संस्कार बनेंगे, जो गलती करके पछताता है उसके अंदर संस्कार नहीं बनेंगे उसके। तो इसीलिए उसने सतोगुणी बनना ही बनना है। अगला जन्म उसका अच्छा जन्म होगा, अच्छे घराने में होगा, ऐसी परिस्थिति में होगा जहां ईश्वर भक्ति का मौका मिलेगा उसको, सतबुद्धि भी उसके पास होगी, बचपन से ही वो इस मार्ग पर चलने लायक होगा, प्रारब्ध भी अच्छा मिलेगा उसको जो इस मार्ग में चलने में सहायक। तो इसीलिए घबराना नहीं चाहिए, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जागरूक हो जाना चाहिए कि गुरु कह क्या रहा है, कि हर मनुष्य स्वभाव लेकर पैदा होता है, लेकिन यदि कोशिश करे तो अपना स्वभाव आप बदल भी सकता है। प्रारब्ध तो नहीं बदल सकता, स्वभाव बदल सकता है। तो मेरी सख्त नजर अपने स्वभाव को बदलने के प्रति होनी चाहिए, और जिसमें ये सदग्रंथों का स्वाध्याय, सत्संग का श्रवण और ईश्वर का सिमरन और बाकी के तीन नियम, सादगी, सत्य और सेवा, ये सहायक है, ये आपको सतोगुणी बनाते हैं। इसलिए पूरी लगन से, पूरा तप करके इसको जीवन में अपनाना ही चाहिए, और इसका अहंकार लेशमात्र भी अंदर नहीं आना चाहिए। याद रखें, अहंकार तमोगुण की ओर ले जाता है, निर्माणता सतोगुण की ओर ले जाती है। इसलिए अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का कभी भी किसी आगे प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम बुद्धिमान हैं, काम बुद्धिमानी से करेंगे, काम ईमानदारी से करेंगे, इसका प्रदर्शन मत करो कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, किसी को शो करने की कोशिश मत करो। गीता में 9 गुण बताए गए ईश्वर भक्त के, ईश्वर भक्ति के लिए। उसमें अपने धर्म को प्रकट करना, इसको दंभ कहा गया। जगतगुरु शंकराचार्य उसके भाष्य में करते हैं, दंभी कौन है, मैं क्या हूं जो प्रकट कर रहा है वो दंभी है। मना है, शास्त्र मना ही है, अपने आप को एक्सपोज करना ही मना ही है। आपकी इंटरनल पर्सनालिटी का इफेक्ट नेचुरली पड़ता है, दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सतपुरुष क्या दिखाते हैं किसी को, जंगल में भी बैठे होते हैं। महर्षि रमण कहते थे कि सतपुरुष यदि जंगल में भी बैठा हो, पूरे संसार पे उसका असर पड़ता है। ये महर्षि रमण कह रहे हैं। तो तेरे کہنے سے بات نہیں بنے گی، تیری کرنی سے بات بنے گی. تو اندر ستوگنی بن، اندر ایشور بھکت بن، اندر سے ایشور پرائن بن، تیری جو انٹرنل پرسنالٹی ہے وہ خود ہی پریرت کرے گی لوگوں کو تیرے پاس آنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے. یدی تیرا پرارمبھ ویسا ہے تو یہ اور جوڑنے اس کے اندر. تو اسی لیے یہ سائلنٹ مارگ ہے، سمجھے، نرمانتا کا مارگ ہے، سمجھے، بڑے ہوش والا مارگ ہے، اپنے سوبھاؤ پر سخت نظر رکھنے والا مارگ ہے. اور اس میں جو پریورتن سوبھاؤ میں ہے وہ شاستروں کے آدھار پر، گرو شردھا کے آدھار پر، ست مارگ پر چلنے کے آدھار پر ہونا چاہیے. تب ہم ایک دن ستوگنی ہو کر بھوش پر اپنا کنٹرول استھاپت کر سکتے ہیں اور جیون سفل کر سکتے ہیں. اوم برہم ستیہ.